ओम शांति, सब प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, इज योर मॉर्निंग गुड? वाई वी आर हेयर, राइट? तो आप सब यहाँ पर आज के सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं और आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल वेलबींग, क्योंकि हमारा इस कॉन्फ्रेंस का विषय ही है कि कैसे हम पूरे तरीके से एजुकेशन फील्ड में पूरा वेलबींग को लाएं। और आज इस विषय के बारे में शेयर करने के लिए हमारे बीच में हमारी प्यारी बहन रितु बहन, हम उनका कर्तव ध्वनि से स्वागत करते हैं, जो आज हमें इस विषय के बारे में बताने वाली हैं। और आप सब ने मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन वॉक किया होगा, आप में से किस किस ने किया? देखिए, आपने बैठकर मेडिटेशन सुना होगा, आंखें बंद करके मेडिटेशन सुना होगा, लेकिन वॉक करते हुए कैसे मेडिटेशन होता है, शायद आप सब ने उसका अनुभव पहली बार किया होगा। आप सबको अच्छा लगा मॉर्निंग में? क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं, वाइब्रेशन पॉजिटिव, और इसके साथ साथ म्यूजिक के साथ वॉक भी हो रही है, प्लस मेडिटेशन भी हो रहा है। तो हम रितु दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के सत्र में। और इसके साथ साथ हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, जो कि वाइस चांसलर हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, उनका भी हम इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सब कैसे स्वागत करेंगे? तालियों के साथ। और मैं बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे गेस्ट का बुके बैजेस के साथ स्वागत करें, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बात किया कि एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, तो अभी तक हमने फिजिकल, मेंटल, इमोशंस के बारे में बात किया, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अ इंटेलेक्चुअल वेलबींग, क्योंकि इंटेलेक्चुअल का सीधा आधार हमारे मन के साथ है। आप दो दिन से सुबह के सत्र में इसके बारे में आप जान भी रहे हैं और जाना भी है कि इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसकी तीन शक्तियां हैं, एक है मन, एक है बुद्धि और एक है संस्कार। और इसमें सबसे बड़ा रोल इंटेलेक्ट का है, क्योंकि इंटेलेक्ट की सबसे बड़ी शक्ति निर्णय करने की शक्ति है। तो आज हम अपनी इंटेलेक्ट को कैसे मजबूत बनाएं, उसको कैसे अच्छा बनाएं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पूर्व मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो बैच और बुके के द्वारा हम सब, हमारे सभी गेस्ट का अभिनंदन करें। और आप सब भी तालियों के साथ हमारे जो भी गेस्ट स्टेज पर बैठे हैं उनका आप स्वागत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, जो कि वाइस चांसलर हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ हमारी रितु बहन, जो कि आज की इस सेशन की वक्ता हैं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं रितु बहन जी के बारे में, रितु बहन के बारे में बताना चाहूंगी। She has a insightful experience of more than 12 years in learning and development, where she has conducted training programs at various education institutes, organizations, Indian Armed Forces and hospitals. She has awarded in Asian HR Leadership Award 2017 for outstanding contribution in training and development. She has awarded Outstanding Performer of the Year for her contribution in training and development at Reliance. तो मैं ऐसी बहन को अनुरोध करूंगी कि जो आज का हमारा विषय है intellectual well-being, उसके बारे में आज हमारे साथ अपने विचार शेयर करें। आदरणीय रितु बहन जी,
ओम शांति। हम सभी बहुत प्यार से एक साथ कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वंडरफुल, एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हमने की और अब उसी फीलिंग उन्हीं वाइब्रेशंस में आगे दिन को बढ़ाते हुए हम एक छोटी सी मन की एक्सरसाइज फिर से करते हैं। हम तैयार हैं? सभी तैयार हैं? चलिए, थोड़ा सा बैक स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड, थोड़ा सा समय आपके अपने लिए। बाहर की सभी बातों से अपने मन बुद्धि को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर, महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको स्वयं से कनेक्ट करती है। जैसे जैसे आप स्वयं से कनेक्ट करते हैं, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत शांत, बहुत रिलैक्स होते जाता है। अब हम अपने से कहें, हम कुछ नया सुनने, कुछ नया जीवन में धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आई एम ओपन टू सम न्यू लर्निंग्स एंड सम न्यू पर्सपेक्टिव्स। Be with yourself, just be with your breath, very, very relaxed. तो इस मन की स्थिति के साथ है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने मन को तैयार किया। किस बात के लिए? मन जो है बहुत सारी बातें है ना, अभी जब हम आए भी होंगे तो हम अपने घर पे जो है, परिवार में जो है, उनसे बात करते हुए शायद आए होंगे, शायद इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की कोई बात होगी वो हमने जल्दी जल्दी पूरी करके, लेकिन जब यहाँ आए तो हमने अपने मन को पूरा तैयार कर लिया कि जो समय हमारे पास अब है उसे हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और ये करने के लिए और इंटेलेक्चुअल वेलबींग को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेती है कि इंटेलेक्चुअल वेलबींग है क्या। ठीक है, तो हम तैयार हैं? आपको ये करना होगा, ये एक्सरसाइज जो है आपको उसके लिए अपने इंटेलेक्ट को यूज करके आपको उसके जो सॉल्यूशंस है उन्हें निकालना होगा। तो तैयार है हम सभी? वंडरफुल। आप यहां पर स्क्रीन पर 10 कॉइन्स देख रहे हैं, 10 कॉइन्स है। ओके, आप इन 10 कॉइन्स में से, आप अपनी बुक में कर सकते हैं, यदि आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, इन 10 कॉइन्स में से आप कोई भी दो कॉइन्स को टच कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं इन अ वे कि आपको दोनों ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से आपको 6-6 कॉइन्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऊपर से काउंट करते हैं तो आपको ऊपर से नीचे भी 6 कॉइन्स मिलने चाहिए, 6 होने चाहिए, और जब आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो वो भी आपको 6 मिलने चाहिए। आप कोई भी दो कॉइन्स को मूव कर सकते हैं। तो आप क्या मूव करेंगे, क्या चेंज करेंगे इसमें? आप जितने अलग अलग प्रकार से इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं आप सोचिएगा। इस तरह से 6 होने चाहिए, इस तरह से भी 6 होने चाहिए। आप ऊपर से नीचे काउंट करें तो भी 6, और आप राइट टू लेफ्ट काउंट करें तो भी 6 मिलने चाहिए। टेन कॉइन्स, दो को आप मूव कर सकते हैं। आपके पास और 1 मिनट। ठीक है, रेडी? हमें से किन किन को 3 सॉल्यूशंस मिले इसके? गुड, मुझे भी नहीं मिले, कोई बात नहीं। किन किन को 2 मिले? ओके, किन को 1 सॉल्यूशन मिला? वंडरफुल, हां जी, 1 सॉल्यूशन मिला, वेरी गुड। आपने उसे बुक में किया, ट्राई किया 10 कॉइन्स को ऐसे अरेंज करना, ट्राई किया, वंडरफुल। आप सर यहां आएंगे, सबसे पहले तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यहां पर कुछ कॉइन्स है, डोंट वरी अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम स्क्रीन पर भी उस सॉल्यूशन को शेयर करेंगे। सो नथिंग टू वरी। सर आप बता सकते हैं आपने कौन से 2 कॉइन्स को मूव करके, आप यहां आ सकते हैं आगे, आपने कौन से 2 कॉइन्स को मूव किया कि आपको 6 हॉरिजॉन्टली और 6 वर्टिकली मिले? इसमें आप कर सकते हैं यहां पे कॉइन्स में। आप सिर्फ 2 कॉइन्स को, हाँ जी, कोई बात नहीं, गुड ट्राई, गुड ट्राई, नो वरीज, गुड एफर्ट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? गुड एफर्ट, थैंक यू, थैंक यू। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? हाँ जी सर, हाँ अभी आ जाइए, साथ ही आ जाइए जी। यस यस, इट शुड बी साइमल्टेनियसली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ 6। व्हेन यू काउंट दिस वे इट शुड बी 6, व्हेन यू काउंट दिस वे इट शुड बी 6। और भी कोई है साथ में आ जाए, वील सेव अ लिटिल टाइम, है ना?
माइक इज बेटर, वो इसमें आवाज फट रही है। ओके गुड, सर आप आगे आएंगे, आगे आ जाइए। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे 5 हो रहे हैं ना, 6 नहीं हुए इस लाइन में, नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई, गुड ट्राई। सभी हम जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। हाँ जी मैम, आप आएंगे?
मैंने ट्राई किया, ये मैंने नंबरिंग कर दिया
इसको। ओके,
एंड आफ्टर नंबरिंग आई मूव दिस 3 इनटू द प्लेस ऑफ 9।
ओके, आप मूव करके बता दीजिए। हाँ, 1 सेकेंड, आप उसको कीजिए, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है उसकी। जी हाँ, ये तो 3-4 मूव हो गए। ओके गुड, सो ऐसे भी कितने हुए? 5 हुए, 1, 2, 3, 4, 5, नो प्रॉब्लम, गुड ट्राई, गुड ट्राई एवरी वन, गुड ट्राई। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने एफर्ट किया। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन, अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन हम जो ट्रेडिशनली एक सेट माइंडसेट से सोच रहे हैं ना कि अच्छा ये दो मूव करना है तो दो को कहीं हमें अलग से रखना है, एक हमारा सेट माइंडसेट है. अब उसको थोड़ा सा चेंज करके इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हम देखते हैं. दो आप इसके और भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं बहुत क्रिएटिवली होकर, ये सेशन के बाद भी आप थोड़ा सा इस पे सोच सकते हैं. सो बेसिकली आप अगर ये वाला जो कॉइन है, यहां पर जो कॉइन है, ओके, आप उसको मूव करते हैं और सेंटर पे लाते हैं. तो एक कॉइन आपने मूव किया और दूसरा जो है ये जो नीचे जो कॉइन है इसको यदि आप ऊपर ले आते हैं यहां पर, तो क्या होगा, 6 हॉरिजॉन्टली 6 वर्टिकली हो जाएगा. सो एक ये वाला कॉइन, ये जो लास्ट में जो कॉइन है उसको आपने सेंटर पे, जो सेंटर वाला है उसी के ऊपर ला दिया इस तरह से, ठीक है. और ये जो सबसे बॉटम वाला कॉइन है, इस बॉटम वाले कॉइन को आपने उठाकर यहां डाल दिया इस तरफ के कॉर्नर पे, ठीक है, क्लियर. ये जो बॉटम वाला है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूं, हमने क्या किया, दो कॉइन्स को मूव किया. कौन से दो कॉइन्स को मूव किया, एक तो यहां वाला जो कॉइन था उसको सेंटर पे डाल दिया, फर्स्ट कॉइन मूव हुआ. सेकंड जो नीचे वाला कॉइन है उसको यहां पर लेफ्ट साइड पर लाकर रख दिया, 6 हॉरिजॉन्टली 6 वर्टिकली. मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू. हां जी, देखिए सोल्यूशन जो है, हम बड़े एक तरीके से सोचते हैं ना कि एक कॉइन कहीं जाना है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मीनिंग जो भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या बात हमारे सामने है, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कोई रिसर्च, जो भी हमारे सामने है उसको क्रिएटिवली हम मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखें, अलग अलग सॉल्यूशंस को सोचें और उसमें भी जो राइट डिसीजन हमें लेना है. फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन को कहां मूव करने से, मूव तो हम सारे कर सकते हैं, ऑप्शंस तो हमारे पास इतने सारे हैं, लेकिन कौन सा मूव करने से और उसे कहां प्लेस करने से हमें सोल्यूशन मिलेगा, राइट. सो थिंकिंग, मेकिंग दैट जजमेंट, मेकिंग योर डिसीजंस, ये सारी जो है आत्मा की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, एबिलिटी टू इंटेलेक्चुअली यू नो उसको डिसाइड करने के लिए. हमारे लाइफ में भी जो भी हम करते हैं उसको सही तरीके से हम डिसाइड या जज कर पाए, ये है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ठीक है. अब जब हम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, सोचिए, जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ा सकती हैं, क्या कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहें मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन हेल्पफुल है, कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे आज सुबह हमने की, यू नो मेडिटेटिव वॉक, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक, ये सारी चीजें माइंड को जो है हील करती है, इमोशंस को हील करती है. तो मेंटल इमोशनल हीलिंग उस तरह से होती है हमारी, वन ऑफ द वेज, राइट. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को हम क्या कैसे बढ़ा सकते हैं, एनी थॉट्स. सॉल्व पजल्स, वंडरफुल. उसको जितना एक्सरसाइज करेंगे, जो भी हम यू नो जो भी मशीन है, सपोज कोई भी आपने एक नया मशीन लाया है घर पे और आपने उसको सालों सालों तक यूज नहीं किया, राइट. तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो कम होते जाएगी, जंक लग जाएगा, कोई पार्ट नहीं ठीक से काम करेगा. कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट को भी जितना हम, जैसे मैम ने कहा कि एक वन ऑफ द वेज इज इंटेलेक्ट को पजल्स एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू हम उसे स्टिम्युलेट करें, और जितना हम उसे स्टिम्युलेट करें ऑटोमेटिकली उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, वंडरफुल. पजल, एनी अदर थॉट. हां जी, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ओके वंडरफुल. हां जी, एनी अदर थॉट. क्वेश्चनिंग, वंडरफुल. क्वेश्चनिंग, हम कोई भी चीज जब देखते हैं हम सोचें कि अच्छा मुझे ये कॉइन यहां ही क्यों रखना है, मैं सेंटर पे किसी के ऊपर भी तो रख सकता हूं. क्वेश्चनिंग, वट एवर वी आर लुकिंग एट, कैन वी क्वेश्चन नॉट विथ एन इंटेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एज सच, बट विथ एन इंटेंट टू अंडरस्टैंड मोर. कई बार स्टूडेंट्स होते हैं हमारे सामने, वो बहुत क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं इतना क्यों पूछ रहे हैं, है ना. नॉट इन दैट सेंस, बट मोर फ्रॉम अ व्यू कि हम कैसे और इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो क्वेश्चनिंग कुड बी वन. हाँ जी सर, आप बता रहे थे पीछे. रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये सारी चीजें जो आपने कही, फॉर एग्जाम्पल पजल, कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चनिंग, इन सब के लिए हाउ शुड माई माइंड बी स्टेबल, फोकस्ड. फोकस कैसे करें, दैट इज द होल पॉइंट, राइट. आज अगर हम साइकोलॉजिस्ट की सुने, इन अ डे जैसे हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट ब्रेन को टच करती है, ब्रेन वेव्स बनती है, उन वेव्स को हम मेजर कर सकते हैं. वही एनर्जी, थॉट एनर्जी जो है वो हमारा ऑरा भी क्रिएट करती है, वही एनर्जी जो है हम आसपास रेडिएट भी करते हैं, राइट. तो ये जो थॉट एनर्जी है उसी को तो कहीं ना कहीं शांत करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे अगर साइकोलॉजिस्ट की सुने, वो कहते हैं इन अ डे वी हैव अबाउट 45,000 टू 65,000 थॉट्स, मीनिंग जितना मैं रिलैक्स्ड हूं, जितना मैं कंफर्टेबल हूं, नंबर ऑफ थॉट्स आर लेस. जितना मैं किसी दिन अपसेट हूं, बहुत ज्यादा वर्कलोड है या बाहर का बहुत प्रेशर है, तो माई नंबर ऑफ थॉट्स कीप इंक्रीजिंग, जिसको हम बीटा प्लस स्टेट कहते हैं. जितने नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा, उतना द माइंड इज, उतनी माइंड की एनर्जी हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं, वो डिप्लीट होते जा रही है, ठीक है. अब ये फोकस कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे करें, पजल सॉल्व करने के लिए यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, यू आर एब्सोल्यूटली राइट. क्वेश्चनिंग के लिए आई नीड टू थिंक, उसके लिए भी माई माइंड नीड टू बी रिलैक्स्ड. अगर मन में इतने सारे, आपको पता 45,000 टू 65,000 थॉट्स का मीनिंग, एवरी वन और टू सेकेंड्स देर इज सम थॉट. अभी भी जब आप ये सुन रहे हैं, जस्ट बिकम अवेयर एंड चेक, क्या बैकग्राउंड में कोई थॉट या फीलिंग अपना काम कर रही है. इट हैपन्स राइट नाउ. इतने सारे, एवरी वन और टू सेकेंड्स व्हेन देर इज सम थॉट, हाउ आवर माइंड बिकम्स, हाउ आवर एक्सपीरियंस ऑफ द डे बिकम्स. एक छोटी सी फिर से हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है. व्हाट आई वांट यू टू नाउ डू इज, आपके पास ये करने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड्स होंगे. वैसे तो मैं जब औरों के साथ ये एक्सरसाइज करती हूँ, आई गिव देम 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे सामने सारे एजुकेटर्स बैठे हैं, तो हमारे लिए 5 सेकेंड्स आई थिंक शुड बी गुड इनफ. सो यू हैव 5 सेकेंड्स टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5 सेकेंड्स में आपको रीड करना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, एंड टाइम अप, 5 सेकेंड्स डन. क्वेश्चन, जो आपने देखा, जो स्क्रीन पर आपने देखा, वो आपके रेगुलर जो आप रीड करते हैं उससे कितना अलग है या सेम है. अलग है. क्या अलग है? हाँ जी, स्पेसेस नहीं थे. ओहो, ऋतु बहन को ना स्लाइड भी बनानी नहीं आती है. देखो, हमें बोलते हैं, हम हेल्प कर देते स्लाइड बनाने में, है ना. स्पेसेस भी नहीं डाले. अच्छा, स्पेसेस नहीं थे और जम्बल्ड अप थे, बिल्कुल एक साथ थे. स्पेसेस नहीं थे और स्पेलिंग मिस्टेक था. ओहो हो, स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं. देखो, अच्छा, सारे एजुकेटर्स बैठे ना, पहले नजर हमारी कहां जाती है, स्पेलिंग्स पर जाती है. गुड. सो स्पेसेस नहीं थे, जम्बल्ड अप थे और एक चीज मिसिंग है. नहीं, 5 सेकेंड्स आई वॉज काउंटिंग. 5 सेकेंड्स आई वॉज काउंटिंग. इनफैक्ट आई गिव यू 1 सेकेंड मोर, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर यू. आपने सवेरे की एक्सरसाइज इतना प्यार से करी, तो मैंने 1 सेकेंड आपको ज्यादा दे दिया. एक और वंडरफुल, किन्होंने बताया? हाँ, मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशंस नहीं थे, स्पेसेस नहीं थी, पंक्चुएशंस नहीं थी, राइट. ऋतु बहन को ना अगली बार आप थोड़ी सी हेल्प कर देना स्लाइड बनाने में, और फिर शायद जो हमारी स्लाइड बनेगी वो शायद ऐसी कुछ बनेगी. 5 सेकेंड्स फिर से. टाइम अप. नाउ इट्स इजी. अब हमें स्लाइड्स की जरूरत नहीं है, अब हम पूरा एक्सपीरियंशियल यहाँ पर, ठीक है। तो अब में और पहली स्लाइड जो हमने देखी जब हमने रीड किया, दोनों में क्या डिफरेंस था? वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड। स्पेसेस थे, कॉमा पंक्चुएशन मार्क्स थे, इससे आपके एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आया? वी कुड रीड, इट वॉज लेस टाइम कंज्यूमिंग, आपको अज्यूम नहीं करना पड़ा कि ये शायद ये वर्ड है, ये वाला शायद ये, पहले वाले में क्या हो रहा था, हम शायद वर्ड्स को अज्यूम कर रहे थे, बेसिस वॉट एवर वी रेड सो फार हम अज्यूम कर रहे थे, हम देख रहे थे अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। अज्यूम नहीं करना पड़ा, लेस टाइम कंज्यूमिंग था, और एनी अदर थॉट, अंडरस्टैंड कर पाए हम, सहज उसे समझ पाए, राइट, एनी अदर थॉट, हाँ पॉजेस थे तो हम उसे रीड कर पाए, समझ पाए, और कुछ, और कोई बेनिफिट, इजी हो गया हमारे लिए, सहज हो गया ना। हम लाइफ में भी क्या चाहते हैं, लाइफ इजी हो, सहज हो, लेकिन इसमें ना सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन है, हम लाइफ को सहज करने के लिए चाहते हैं कि बाह्य तौर पर सब कुछ सहज हो, लेकिन एक्चुअली जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कॉम्प्लिकेट करता है वो पहली स्लाइड। कैसी थी पहली स्लाइड? बहुत सारे वर्ड्स, बिल्कुल स्पेस नहीं, पंक्चुएशंस नहीं, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नॉट सो गुड, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट। अब हम अपने संकल्पों को देखें, वो जो 45,000 टू 65,000 एंड जब हम थोड़ा सा बहुत किसी बात को लेकर अपसेट होते हैं तब उसकी स्पीड, तब फिर हमारा एक्सपीरियंस, जितना जितना माइंड में इन संकल्पों के बीच में वो स्पेसेस, राइट फुल स्टॉप, राइट फुल स्टॉप मीनिंग आज सवेरे सपोज मैं घर से बस निकल ही रही हूं, ठीक है, हम निकल रहे हैं आज इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारा, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट के लिए हम जा रहे हैं, निकलते टाइम ही उन्होंने कुछ कह दिया, फिर क्या होता है, हाँ जी, माइंड अपसेट हो जाता है, माइंड अपसेट होता है तो क्या होता है, पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अच्छा वंडरफुल, पूरा दिन खराब हो जाता है, क्यों पूरा दिन खराब होता है, हम वही 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 थॉट क्रिएट कर 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 के उसे फुल स्टॉप नहीं लगाया, उन संकल्पों में राइट स्पेसेस नहीं क्रिएट की। एक क्वेश्चन पूछूं, ये किनकी वजह से, ये जो हमारा सारा दिन खराब गया, निकलते टाइम ही शुरू हो जाते हैं, पूरा दिन मेरा खराब, ये किनकी वजह से, उनकी वजह से जिन्होंने ये सब कहा है ना, उनकी वजह से। एक क्वेश्चन पूछूं, अगर उनके बोल या बाह्य परिस्थितियां हमारे थॉट डिटरमिन करती, तो ऐसा होता है कभी हमारे जो एचओडी है, या आप खुद एचओडी हो तो आपके जो चेयरमैन या होंगे, ठीक है, आपसे जो भी बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप तीन जो है कलीग्स हैं, आप अपने जो भी सीनियर हैं उनके पास जाते हैं, अपने एचओडी के पास जाते हैं, और वो किसी बात को लेकर अपसेट हैं, और कोई होगा, कोई रिसर्च या कोई एक असाइनमेंट उन्होंने दिया होगा जो उनके अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं था, और वो आपको जो है वो आपको काफी कुछ कह देते हैं, आपको डेडलाइन भी पता थी, आपको पता था इस टाइम पे आपको ये देना है, आप लोग कोई डेडलाइंस को मीट नहीं करते हो, इतना पहले बताने के बाद भी अब तक नहीं हुआ, जबकि रियलिटी इज कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं करने को, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टास्क था, तो आप भी बहुत बिजी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी, क्योंकि उनकी आपसे वो अपेक्षाएं थी, वो एक्सपेक्टेशंस थी कि आप वो प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तीन जो कलीग्स हैं आप मिलकर बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे, तो उन्होंने बहुत कुछ आपसे कह दिया, तीनों से कह दिया। अब एक क्वेश्चन पूछूं, उस सिचुएशन में क्या तीनों ही जो कलीग्स हैं वो सेम रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं बताइए, हाँ जी, अलग रहता है, क्या अलग होगा? एक हो सकता है कि हमें कह देते हैं इनको, एक तो हमारे पर इतनी मल्टीटास्किंग हम कर रहे हैं, बच्चों को भी देखना, उनकी पढ़ाई, उनका सारा प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, एग्जाम पेपर, एग्जाम करेक्शन, और जो हमें रिसर्च करना होता है, जो पेपर्स प्रेजेंट करने होते हैं वो भी देखो, और प्लस एडिशनल टास्क आते ही जाता है एक के बाद एक. एक जना बोलेगा इनको तो बिल्कुल मतलब वैल्यू ही नहीं है हमारी, हम इतना करते हैं हमारी वैल्यू नहीं है. एक रिस्पॉन्स वो हो सकता है. दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, इनका तो काम, वेरी गुड, इनका तो काम ही है बोलना, इनको तो इनकी ड्यूटी है बोलना, बोल दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके. आज सर का मूड खराब है एज यूजुअल, वो भी ऐड कर देते हैं सर का मूड खराब है, कोई बात नहीं, खराब है, इट्स ओके. तीसरा हो सकता है शायद वो किसी परेशानी में है, हम थोड़ा शांत रह लेते हैं, इट्स ओके, हम बाद में उनको अपनी बात बता देंगे. इसमें क्या ये तीनों रिस्पॉन्सेस किए हैं, हमने तीनों किए होगा ना, किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स वन हमने दिया होगा, किसी में टू, किसी में. अगर वो सर डिटरमिन कर रहे होते कि आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हो तो आप तीनों का सेम होता ना. अगर वो वर्ड इज इक्वल टू माई एक्सपीरियंस तो तीनों का सेम होता, लेकिन तीनों का अलग था. विच मीन्स बाह्य परिस्थितियां, वो ना स्पेसेस ना होने के लिए, फुल स्टॉप ना होने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर है या एक स्टिम्यूलस है. बट हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो एक है सिचुएशन. अब देखिएगा ये वाली सिचुएशन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. सिचुएशन हो सकती है हमारे स्पाउस, सिचुएशन हो सकती है हमारे एचओडी, हमारे जो सीनियर है, सिचुएशन हो सकती है हमारी मदर इन लॉ, जो सुनते ही नहीं है, आते नहीं है, और फिर कोई ना कोई लेटर लेके आ जाते हैं, कोई भी, जो भी आपको लगता है ना सिचुएशन. दूसरा है एक्सपीरियंस. आज क्या हो रहा है, सिचुएशन हमारे एक्सपीरियंसेस को डिटरमिन कर रही है, उनकी वजह से या इस वजह से, क्योंकि उसके बीच का जो एक पॉइंट है ना उसको हमने मिस आउट कर दिया, जो है कैपेबिलिटी ऑफ आर इंटेलेक्ट, कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग द राइट चॉइसेस, डिसीजन, उसको हमने थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं. तो क्या हो गया, सिचुएशन जैसी रही, बात जैसी रही, लोगों का व्यवहार जैसा रहा वैसे मेरा अनुभव. और फिर क्या होता है, जो पहली स्लाइड क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड. हम चीजों को जैसे है वैसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अपने अजम्पशन, क्योंकि थॉट्स इतने चल रहे होते हैं ना, वो थॉट्स बहुत ज्यादा अजम्पशन के बेसिस पर होते हैं. आप देखिएगा वो ऐसा सोच रहे होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये सारे क्या है, सारे अजम्पशंस हैं. क्यों, क्योंकि हम लाइफ को जो जैसी है उसे वैसा देख नहीं पा रहे, क्योंकि संकल्पों में स्पेसेस नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, राइट. और वो जो है हमारी इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी को डिप्लीट करते जाता है. जितनी जितनी वो इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी डिप्लीट होते गई, उतना उतना हमने बाह्य परिस्थितियों को सारा कंट्रोल दे दिया कि हम जीवन में कैसा अनुभव करें, या हम लाइफ में जो डिसीजन लाइफ को कैसे या परिस्थिति को वे करें, जज करें, वो सारा सिचुएशंस के दे दिया. डिसीजन मेकिंग, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपके बहुत संकल्प चलते हैं ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है. हमने कहा है ये कभी, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जब हम ये कहते हैं ना मुझे नहीं पता क्या करना है, तब हमारे संकल्प बहुत चल रहे होते हैं, और क्योंकि मन में वो स्थिरता नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या हो रहा है, वो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम चीजों को जज नहीं कर पाते. तो इंटेलेक्चुअल हमारी इंटेलेक्चुअल वेलबींग या इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी वेस्टफुल थॉट्स है ना, जो भी वेस्टफुल थॉट्स, मीनिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहां पे हैं, ठीक है, यहां बैठे हुए हम सोच रहे हैं कि पता नहीं घर पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मस्ती तो आके बैठे हैं, या स्टूडेंट्स कॉलेज में पता नहीं वो असाइनमेंट को ठीक से फोकस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे. आपसे पूछती हूं, ठीक है, आप यहां बैठे जब ये सुन रहे हैं और बैकग्राउंड में ये सोच रहे हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मीनिंग इट इज वेस्टफुल थॉट्स, जिसको हम एक्शन में नहीं लाते हैं. यू नो वी डोंट पुट इट इनटू एक्शन. वो है वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, जिनको हम एक्शन में नहीं ला रहे. अब यहां बैठ के सोचिए, लास्ट हाफ एन आवर में हमने कितने ऐसे थॉट्स क्रिएट किए होंगे, राइट? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो स्टडी है, साइकोलॉजिस्ट ने जो थोड़ी बहुत स्टडी की है माइंड के ऊपर, वो कहते हैं कि 98% ऑफ वेस्टफुल थॉट्स. एक फैक्ट्री सोचिए जिसमें सुबह से शाम तक इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन 98% ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर, क्या होगा फैक्ट्री का? लॉसेस में जाएगी ना. तो हमारे एक्सपीरियंसेस के भी तो लॉसेस हो रही है लाइफ में, राइट? तो इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो भी वेस्ट है ना, माइंड एंड इमोशंस का जो भी वेस्टफुल, अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड है ना, उसको थोड़ा सा हम आज लेट गो करने का के लिए जो टेक्निक है वो सीखते हैं, ठीक है? जो आपने सारी चीजें बताई ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ वो सब कर पाने के लिए दो बातें, दो टेक्निक्स जो हम सीखेंगे. सबसे पहली बात जो है वो है, जीवन जहां हो रही है, वेर एवर लाइफ इज हैपनिंग, हम लाइफ को वहां जिए. मीनिंग, वंडरफुल, लाइफ कहां हो रही है इस एक मोमेंट में, गया वो मोमेंट, ये मोमेंट गया, ये भी मोमेंट, ये मोमेंट ये भी गया, मोमेंट बाय मोमेंट, एक एक पल जो जा रहा है, लाइफ एक्चुअली वहां हो रही है. आज सुबह घर से निकलते टाइम उन्होंने ऐसा बोल दिया, लाइफ वहां हो ही नहीं रही है. उन्होंने बोला दो मिनट के लिए, ठीक है? आप मुझे बताना, हु इज टू बी नाउ ब्लेम्ड? ओके, अभी तक हम बोल रहे थे ना उनकी वजह से, अब बताइएगा हु इज टू बी ब्लेम्ड? उन्होंने दो मिनट बोला, उसको हमने अपने मन में तीन घंटे बोला, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो तो बोल के चले गए, भूल भी गए, शाम को आए, उनको तो याद भी नहीं है सुबह क्या बोला था, वो तो ऐसे ही बस बोल दिया था, नाश्ते में नमक कम था, बस यूं ही बोल दिया था, कोई उनका भाव इतना कोई था नहीं. हम उसको लेके सारा दिन, वो तो भूल भी गए, और हम इतनी मेहनत सारा दिन करो, कोई मदद नहीं करता, ये नहीं, फिर भी ऐसे 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 इतना सब कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं, हमें ही बोलते हैं, राइट? पास्ट, पास्ट कुड बी अ मिनट बैक, पास्ट कुड बी एन आवर बैक, पास्ट कुड बी अ डे बैक, पास्ट कुड बी अ वीक बैक, पास्ट कुड बी अ मंथ बैक, पास्ट कुड बी अ ईयर बैक. और हम में से कुछ जो है ना, हम बहुत एक्सपर्ट हैं 10 साल पुरानी बात को लेकर भी, हाँ देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं, अनुभवी है ना हम सब बहुत, क्या करते हैं, आज भी अगर वो हमारे आ जाए, उनको देखकर वही सिचुएशन, ये कपड़ों में, ये जगह पे ऐसे बोला था, वो सारे थॉट और इमोशंस हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं, हम इतना एक्सपर्ट हैं. तो पास्ट एंड फ्यूचर को लेट गो करके जीवन को वहां जिए जहां जीवन हो रही है. हम में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनके हर मोमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो. कोई है क्या हर मोमेंट में कुछ नया आ रहा है? मोमेंट बन नहीं, हर मोमेंट नहीं आता. तो जितना जितना हम अपने मन के अटेंशन को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे, मन उतना उतना वो राइट स्पेसेस, वो राइट फुल स्टॉप क्रिएट कर पाएगा. तो एक है प्रेजेंट मोमेंट, और दूसरा है जो राजयोगा में और सबसे इंपॉर्टेंट सुन भी रहे हैं, अपनी यथार्थ अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या है? मैं कौन, कौन हूं मैं? सिर्फ आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पीसफुल बीइंग. थॉट, अब ये साइकिल है और बहुत यही हमारे सारे जीवन के अनुभवों को डिसाइड करता है. थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस. थॉट, मेरे साथ ही ऐसे होता है. थॉट, फीलिंग, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, जबकि बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में अच्छा भी, जिसको हम देख नहीं रहे हैं. थॉट, हमने वो थॉट में शिफ्ट लाया, आई एम ओके, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड, थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंस. ये सोचने की जगह कि सुबह उन्होंने क्या बोला, हम ये थॉट क्रिएट करें, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल. अपनी उस ओरिजिनल अवेयरनेस को हम क्रिएट करें. तो पहली बात प्रेजेंट मोमेंट, दूसरी बात अपनी यथार्थ अवेयरनेस को हम क्रिएट करें, मैं कौन. क्योंकि जितना जितना वो मैं कौन आएगा, मैं आत्मा, तो आत्मा के सातों गुण सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी. और उनके आधार पर हम शक्ति है, पावर है टू लुक एट द सिचुएशन इन द राइट वे, टू मेक राइट डिसीजंस, टू लुक एट लाइफ विद दैट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन. परमात्मा कहते हैं सदा खुश, सदा खुश. कोई भी बात आ जाए, कुछ भी चला जाए, खुशी ना जाए. ये थॉट हम अभी क्रिएट करें, देखिए कैसे आपका पूरा माइंड एंड एक्सपीरियंस पूरा चेंज हो जाता है. कुछ भी हो जाए, सदा खुश. क्यों? परमात्मा साथ है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्ट की लास्ट बात, जिसके बाद हम एक छोटे से एक्सपीरियंस के साथ एंड करेंगे, लास्ट बात इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. जैसे हमने देखा ना, कोई भी मशीनरी को अगर हमने बहुत अच्छे से बहुत समय तक यूज नहीं किया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसका थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है ना. तो बुद्धि का मेंटेनेंस क्या है, उसकी ऑयलिंग क्या है? वो है उस परमात्मा को, अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देना. आज सुबह बहुत अच्छा एक अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं. जब वो सुबह का मेडिटेटिव वॉक पूरा हुआ, तो उसके बाद किसी ने कहा हम भी सीखेंगे. वो इतना अच्छा बजाया ना, फ्लूट इतना अच्छा बजा, तो उन्होंने कहा हम भी सीखेंगे. मैंने कहा हाँ, वेरी गुड, मैं भी सीखूंगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सीखा हुआ है. हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जब पहली बार फ्लूट आया, मैंने अब तक नहीं सीखा है, मुझे वो सारे गम प भी अब तक बजाना नहीं आता है. जो एक्चुअली में बहुत लर्नेड है वो समझ पाते हैं, इनको तो आता नहीं है. लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, जब वो पहली बार हाथ में आया फ्लूट, या इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे ना, मैंने बस उस परमात्मा को सामने रखा और मैंने कहा आप बजवाना, ये जो है आपको सरेंडर, आपको करवाना है. और वो पहली बार जो धुन बजी, वो अब तक वैसे ही बज रही है, मैंने नहीं सीखा. लेकिन जब हम अपनी बुद्धि को उस परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं, तो वो हमसे कराता है. और वो जो कराता है ना, वो इतना बियॉन्ड होता है हमारे एक्सपेक्टेशंस और हमारी यू नो कैपेबिलिटी से, इतना बियॉन्ड होता है. तो जो भी आप करें ना, चाहे आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो भी आप इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, सबसे पहले परमात्मा को अपने सामने लाएं, अपनी बुद्धि को उसको सरेंडर कर दें, उससे बोले आप कराओ, हम आपके बच्चे हैं ना. हमारी कैपेबिलिटी, इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी हो सकता है कहीं डिप्लीट हुई हो, लेकिन वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान, उसकी बुद्धि को यूज करें तो लाइफ में हर चीज बहुत सहज हो जाएगी. और ये मेरा अपना अनुभव है, जब मैं सोचती हूँ ना ये करना है वो करना है, चीजें हो जाती हैं, कभी नहीं भी होती है. लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना कि बस जो है तुझको अर्पण, तुझे कराना है तेरा कार्य, हम तो बस निमित्त, इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियां जुड़ गई, परमात्मा की दुआएं, परमात्मा के वरदान उसमें जुड़ जाते हैं. ठीक है, तो तीन बातें, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सदा खुश रहना, और तीसरा परमात्मा से कनेक्ट करके उनके शक्तियों और वरदानों से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं. इन्हीं थॉट्स के साथ लास्ट में एक छोटा सा अनुभव, एक्सपीरियंस, जो भी अब तक हमने सुना उसका अनुभव. हम सभी बहुत रिलैक्स हो जाएं, आपकी बैक थोड़ी स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स,
very very relaxed, very comfortable. Little time for your own self. Mess महसूस करें, इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। ना पास्ट ना फ्यूचर, दिस प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज इट, दैट रिमेन्स। अब धीरे से हम अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करें, देखें संकल्पों को, रोकिए या दबाइए नहीं, धीरे से ऑब्जर्व करें। जैसे ही आप मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करते हैं, मन बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, संकल्पों के बीच के उस गैप को देखें, उसे महसूस करें। संकल्पों के बीच के गैप में जो शांति, जो सुकून है, गहराई से हम उसे अनुभव करें। अब हम सब मिलकर सिर्फ एक संकल्प क्रिएट करें, आई एम a peaceful being। परमात्मा की प्रेजेंस को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। महसूस करें कि परमात्मा अभी आपके साथ, जैसे आपको बहुत सारी दुआओं से भरपूर करते जा रहे हैं। परमात्मा के उन दुआओं से, उन वरदानों से भरपूर मन बुद्धि बिल्कुल परमात्मा से जुड़ी हुई, दिल से हम उस पिता परमात्मा का बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब धीरे से हम अपनी आंखें खोलें, लेकिन उसी भाव और भावनाओं में कंटिन्यू करें। जस्ट बी विद योर सेल्फ, जस्ट बी विद योर ब्रेथ। ओम शांति।
थैंक यू सो मच। कितने शांत पूर्वक हम उस वातावरण में चले गए हैं जहां पर बोलने को भी शायद मन नहीं कर रहा है। तो आप सबने उस शांति को अनुभव किया? यस। तो दीदी ने बताया कि अगर हमें इंटेलेक्चुअल को पावरफुल करना है, उसके तीन स्टेप्स हैं। फर्स्टली, पास्ट इज पास्ट, एंड सेकेंड, ऑलवेज बी हैप्पी, एंड थर्ड इज ऑलवेज कनेक्ट आवर सेल्फ विद द गॉड। तो ऐसे हम अपनी इंटेलेक्चुअल को अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार हम कर्तव्य ध्वनि से ऋतु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें आज के टॉपिक के बारे में बताया। और अभी हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रघुविंदर सिंह जी, जो कि वाइस चांसलर हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी से, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज अपने विचार हम सबके बीच में रखें। आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह जी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। रितु बहन ने हमें इतना रिलैक्स कर दिया है, सो देयर इज नीड टू एजिटेट एंड कम बैक टू आवर ओरिजिनल शेप एज एजुकेटर्स। रितु बहन ने अपने हम सबको अपने आप से इतना बेहतर तरीके से कनेक्ट करना सिखाया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एजुकेटर्स। आई ट्राई एंड कनेक्ट वट एवर रितु बहन हैज you know, try to make us understand who we are and how it actually connects to the education. On the outset, I like to thank from bottom of my heart to the Brahma Kumaris Isvya Vishwavidyalaya for inviting me here. I haven't seen anywhere so much of peace, so much of peace. Been to hundreds of conferences and different places. Even there are thousands of people here, you don't have a noise. And they all talk. That's the beauty of the place. So what he's trying to, you know, indicate is environment is most important. Now when it comes to education, most of us have an assumption that education is a straight line. And real life, there is nothing called straight line. Just imagine if our ECG was a straight line. None of us like straight line ECG. So education is also have waves, sinusoidal waves. If some of the engineers are here, they would understand what it is. There are two aspects of human being. One is inside and another is outside. And most of us are actually focused on outside of us. Outside is, what's my designation? What do I have? My materialistic possessions are all outside. Then there are very few of us who actually concentrate on inside. But remember, our outside is determined by our inside. If you really want to change your outside, first change your inside. Now, what is that inside? All that what Ritu Bahan told us, it's all inside us. Trying to know who we are. That's self-awareness. I'll just give a small anecdote about this. What is this inside and how significant it is. You know, hamari colonies mein sab jagah balloon sellers ghumte rehte hain. Chote chote bachche unki taraf bhagte hain and wo balloon khareedte hain. तो एक छोटा सा क्यूरियस क्यूट सा बच्चा बैलून सेलर के पास जाता है और कहता है, अंकल अंकल ये ब्लू वाला ऊपर उड़ेगा? He said, yes son, it will go up. Then he asked, how about this red one? He said, it will also go up. And white one, this will also go up. Seeing the curiosity of the child, the balloon sailor said, son, it's not the balloon which goes up. It is what is inside the balloon. What kind of gas is actually filled inside the balloon? So how much we will rise up in life will depend upon what is inside us. So all our efforts have to be on changing inside. And I don't know how much do we actually work on children's inside. You know, the biggest challenge of education today, forget about structuring. Structuring is never a biggest challenge of education. Biggest challenge of education is how to ready the children for education. That's my biggest challenge. And if you want to ready the biggest, that children, you please start working on their insight. This concept of education for holistic well-being or holistic well-being for education is both interconnected and interdependent. These are the two variables. If you have researched on multivariate analysis, there is nothing called independent and dependent variable here in education. Everything is interdependent and interlinked. I remember three different couplets which speaks quite a lot about what goes inside the individual. तूफान को शांत करने की कोशिश नाहक है, वो गुजर जाएगा। आप अपने आप को अंदर से शांत रखिए, वो चला जाएगा। दूसरी जो कपलेट है, उस आसमान में ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों को भी पता है आसमान में जगह नहीं आती, बैठने के लिए उनको धरती पे या पेड़ों पर ही आना पड़ता है। What does that mean? Whatever high you have achieved in life, please remember, you got to be grounded. And this is what it actually talks about inside. तीसरी जो मुझे couplet हुआ है, खुशी पाने के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होकर काम करोगे तो खुशी मिलेगी। Now that's all internal happiness. Let's bring this to education. Education and academics are not synonymous. Please understand. Education doesn't need the kind of structuring we have done in our universities. Education doesn't have a single place, single means, or single methods to learn. It's a lifelong thing. But when we actually contrive education into systems, processes, semesters, credits, hours, this becomes academics. So it's limiting of education, basically, if you look at. When you look at education, you know that holistic well-being. Education has to be holistic, which means we got to work on a child's mastics, heart, hriday, heart, and today the fourth domain which has emerged is the technology. We as a university has put technology for every kind of a program. Every program. And the four aspects of technology which we have made essential for our students is AIML, cyber security, data analytics. These are essential. You can't avoid it. Then the second part is cognitive ability. Now, when it comes to cognitive, that means ability to think in higher orders. Knowledge we all have. But can we use that knowledge? You know, ek Hindi mein mujhe yaad aata hai. Padhne ka koi fayda nahi agar aap usko yaad nahi rakh sakte. Hindi sabko samajh mein aati hai ho. Yaad rakhne ka koi fayda nahi agar aap usko samajh nahi sakte. Samajh ke kya karoge agar aap usko upyog nahi kar sakte. उपयोग मात्र सफिशिएंट नहीं है अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। Analysis is not good enough if you cannot contextualize it. That means आप उसको evaluate नहीं कर सकते और इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर इस सब को मिलाकर अगर आप कोई नई चीज नई विधि नया तरीका नहीं खोज सकते. Now that's all about education. The third pillar of education, that is domain, is an affective component. Affective is all about human. That's all about inside. Do we know who we are? Do we have a strong self-awareness? बहन ने बात की mindfulness की. Resilience है. और हम थोड़ा सा unsuccess हुआ, घबरा गए, सब कुछ छोड़ दिया. Passion है. ये word जो passion है, वो बहुत बुरी तरह से use किया गया. You can't get a passion immediately. Passion comes after trying multiple interests. It doesn't come its own. And passion is always related to your purpose. And unfortunately, we have a tendency to combine or relate or synonymously use goals and purpose. There's a major difference between the two. Goal is a self-oriented. Purpose is others-oriented. The purpose of my education could be serve the society, serve the country, and help my family. Goal may be I want to achieve a very high standard education. I want to achieve a job. So unless we, you know, relate ourselves to purpose, we will not be able to have a sustained success. Two important concepts which always comes to my mind is EQ and SQ when it comes to education. That is emotional quotient and a spiritual quotient. Both are interrelated and interconnected. One helps the other. So when you find your passion, purpose, well-being for others, you start become actually spiritually connected. And you are more likely to succeed than others. The fourth component which I was talking about, skills. Psychomotor skills. That is ability to do with hands. Now, a lot of you, when you listen to the industry, you have a very common rant from them saying that there is a huge gap between industry and academics. I say there is no gap between the two because you don't understand, number one. Number two, your expectations are there, which we cannot meet. Our job is not to prepare the technicians. Our job is to prepare intellectuals. People who have high ability to think. People whose, you know, higher order thinking has been developed, which can be then used from one domain to another domain of your industry. That means what we are looking is, we are here to actually develop transferable skills, not non-transferable skills. Transferable skills are those which can be used from one industry to another industry, one job to another job. And one of them, most important, is human beings' well-being. That's the most important skill which I learned. If you have developed yourself internally, no job is a challenge to you. No job is a challenge to you. So that's our responsibility as a university. So when I look at my, you know, most of us, you know, structure highly the entire education. The focus should be on letting the student have a higher order knowledge. That is, moving from factual knowledge to the conceptual knowledge. Conceptual means, can you relate your existing knowledge with each other? Can you relate physics with mathematics to the chemistry or all these to the engineering? Or your management to sociology, psychology, or many other domains. If you are not learned, you are not learned education. From there, I'll move my education to what we call is a procedural knowledge. That is learning to do jobs sequentially and stepwise. Now, if I'm trying to teach communication to the children, I need to tell them how should they start, how do they stand, how do they face audience. That is a sequential procedural knowledge. And the third one is metacognitive. Do you know your own knowledge? Do you understand what you don't understand? That is, do you actually ever question your knowledge? If I can achieve that, I think I have done my job as an education. So my last, you know, the time is a constraint. So I'll try and put the whole thing into a sequential steps and start from end to the first. So when we, you know, prepare our children for education, what we do? Ultimately, what's our need? The excellence in learning. Or as on a job, excellence in job. Where does it actually come from? It comes from your mind's executive function. We say executive function of the brain. That means, is the brain emotionally free to function? If it is not, you will never ever achieve learning, you will never ever achieve your job, because, as Ritu Ben said, if you have so much of agitation in your mind, so many of ideas, emotions flowing, you cannot perform well, wherever you are, whether in the job or at home, etc., etc. How do you achieve this brain's executive function? It says that you need to have your boundaries specified for it. That means you got to decide what is allowed and what is not allowed in your own sphere of work. Whatever happens in your life, whatever happens in the classroom or in our office, it's we who allow it or we don't allow it. So laying the boundary, an appropriate boundary, becomes most important. If the children are disturbing the class, it's me who has allowed it by my own behavior or by my own actions. It's not the children who have done it. So you determine your own boundaries. Once you determine your boundary, things would happen the way you want it to happen. Now, where does the brain function comes from is called engagement of the children or engagement of the employees. How well we all are engaged here is because of the kind of environment we have created. The engagement of a children or engagement of employee means they all are emotionally and intellectually involved in what they are doing. There is a high passion and creativity in what they are doing. Only and then only you are said to have engaged in what you are actually doing. Where does it come from? The total environment in which either the job or education happens. Now, who is responsible for it? The institution, the teacher, and the student himself. All the three. You know what we say? Education is all about who is being shaped, who is shaping, and how he is being shaped. There are three most important components. And out of these three, two relates to human beings. And the most difficult prani is dunya mein hai, human being. Most difficult. Because if you look at any child, a child is with us only and only for 12.5% of the time in the institution. 12.5%. And imagine what kind of impact an institution or teacher can have if he spends only 1/8 of the time with us. How you can calculate it? UGC says that there has to be 180 contact hours. So 50% is gone. Normally our interaction or engagement hours with the children are about 6 to 7 hours. So that makes it 12.5%. Therefore, I advise the parents, and I always tell them whenever I meet, it's not only the responsibility of the institution or a teacher to assure the success of your child, it's equally your responsibility, because he spends most of his time outside my classroom and institution. Your family, what you talk, what the way you act influences him majorly. Majorly. Right from his or her childhood. The kind of company he or she keeps. The amount of time he spends on social media. The friend network he has. The societal network he has. All these are a major impact on him. So if you do not pay attention to that, I, as an institution, cannot do much about it. I can do only what is in my hand. So unless this is gone to the head of parents, it will be very difficult. So it's a joint responsibility of the parents and the institution to assure the success of the children. Right? That's what I like to actually share with you. With this, I like to conclude. Thank you. Thank you so much for hearing patiently.
Thank you, brother, for sharing your views with us. तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे जो भी गेस्ट स्टेज पर बैठे हैं उनका धन्यवाद और ऑनर करें और आप सब तालियों के साथ हम आज के हमारे गेस्ट का और स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि खुशी से काम करेंगे तो दैट इज अवर सक्सेस. खुशी के लिए काम करना दैट इज नॉट अवर सक्सेस. तो आप सब कर्तव्य ध्वनि से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीर सिंह जी जो अपना समय निकालकर हम सबके बीच में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं.